नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे।
अगर एक बार सब लोग जोर से पुकारेंगे तो कैसा होगा?
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।
हरे कृष्णा, सबका बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्णा। हमारा जो गौड़ीय संप्रदाय है उसमें कई ऐसे आचार्य हुए हैं जो बड़े महान आचार्य हैं और गोपियों के अवतार हैं। संप्रदाय का मतलब होता है कि भगवान तक जाने का रास्ता, और भगवान तक जाने के कई रास्ते होते हैं और सब रास्ते ब्रह्मा जी से शुरू होते हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा और आचार्यों का निर्मिति होती है, जन्म होता है, और उनके द्वारा भी संप्रदाय निर्माण होते हैं। 12 प्रकार के संप्रदायों का वर्णन किया गया है और कलयुग में उसमें से 4 प्रचलित हैं, बाकी 8 नहीं हैं कलयुग में। एक है श्री संप्रदाय, एक है कुमार संप्रदाय, एक है शिव संप्रदाय और एक है ब्रह्मा मध्व गौड़ीय संप्रदाय। श्री संप्रदाय लक्ष्मी देवी से शुरुआत होती है उसकी। कुमार संप्रदाय जो 4 कुमार ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, सनक सनातन सनंदन सनत कुमार, ये 4 कुमार जो हैं इनके द्वारा शुरू होता है। शिव संप्रदाय शंकर जी से शुरू होता है, जिसको आज हम पुष्टिमार के रूप में भी जानते हैं। और जो हमारा संप्रदाय है उसको ब्रह्मा मध्व गौड़ीय संप्रदाय कहते हैं, क्योंकि हमारे संप्रदाय में सबसे पहले ब्रह्मा हैं, उसमें बाद में नारद मुनि, उसके बाद में व्यास मुनि, ब्रह्मा नारद मुनि उसके बाद व्यास मुनि उसके बाद मध्वाचार्य, और उसके बाद उस संप्रदाय में कई आचार्य आते हैं और बीच में 524 साल पहले उसमें चैतन्य महाप्रभु भी आते हैं। इसलिए ब्रह्मा मध्व और गौड़ीय यानी गौड़ांग महाप्रभु जिसमें आए हैं, और चैतन्य महाप्रभु ने इसमें हर जो 4 संप्रदाय टोटल है, 3 दूसरे हमारा 1, इनके हर एक संप्रदाय में 2 विशेष गुण होते हैं। वो सारे 2 विशेष गुण मतलब 6 गुण उन्होंने अपने संप्रदाय में सम्मिलित किए हुए हैं। तो रूप मंजरी लवंग मंजरी जो भगवान की सखियां हैं, मंजरियां हैं, उन सब लोगों ने अवतार लिया था जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया भगवान के भक्त के रूप में। जो कृष्ण की सखियाँ थी, जो कृष्ण के समय यहाँ बरसाने में रहा करती थी, उसमें प्रधान सखी है रूपमंजरी, जो ललिता देवी की सखी हैं, ललिता देवी की असिस्टेंट भी हैं, तो वो रूपमंजरी जो है वो रूप गोस्वामी के रूप में है, और लबंग मंजरी जो है वो भी ललिता की सखी है, वो सनातन गोस्वामी के रूप में आए। गुड़ मंजरी जो है गोपाल भट्टर गोस्वामी के रूप में आए। इस तरह से 6 गोस्वामी आए, एक्चुअली 8 गोस्वामी हैं। सबसे पहले ब्रज में भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी आए। लोकनाथ गोस्वामी कस्तूरी मंजरी हैं, और इस तरह से ये 2 पहले आए, उसके बाद में 6 आए, और ये 6 लोगों ने मिलकर ब्रज का जीर्णोद्धार किया, ऐसा कह सकते हैं, या ब्रज को पुनर्स्थापित किया ऐसा कह सकते हैं। ब्रज तब लुप्त हो चुका था। तो संक्षेप में इनकी कहानी ऐसी है, रूप और सनातन ये दोनों भाई थे, और उस सनातन गोस्वामी जन्म से वो हमारे गांव के हैं, कर्नाटक। हम दोनों जिस जाति के हैं, गौड़ सारस्वत ब्राह्मण, उस जाति में उनका जन्म हुआ था। फिर जब कर्नाटक में पुर्तगीज और बहुत लोगों का आक्रमण हुआ तो ये बंगाल में चले गए और वहाँ पर संत बने। एक प्रकार से बहुत धनी थे ये, बहुत धनी मतलब नंबर वन। सबसे पहले वो बहुत विद्वान थे, सारे शास्त्रों का अध्ययन उन्होंने किया था, और बड़े चतुर और बड़े कुशल प्रशासक भी थे। तो उस समय नवाब हुसैन शाह राज्य करता था, और नवाब हुसैन शाह जो जरासंध का अवतार था, तो उसने सब हिंदुओं को कष्ट देना शुरू किया। तो इनको देखा, रूप और सनातन को, तो ये तो इतने बड़े बुद्धिमान हैं, ये अपना राज्य चला सकते हैं, मतलब मेरा बहुत सारा बोझ खत्म कर सकते हैं। तो उन दोनों को उन्होंने धमकी दिया कि मेरे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनो, मतलब अर्थमंत्री और प्रधानमंत्री बनो, नहीं तो तुम्हारे हिंदुओं को बहुत कष्ट दूंगा मैं। इसलिए ना चाहते हुए भी वो नवाब हुसैन शाह के प्रधानमंत्री और अर्थमंत्री बने, और इतने नेक थे वो, इतने प्रामाणिक थे कि बहुत जल्द उन्होंने नवाब हुसैन शाह का पूरा विश्वास संपादन किया, और नवाब भी बहुत खुश हो गया क्योंकि राज्य का कारोबार इतना सुंदर चलाने वाले लोग मिल गए। तो वो हमेशा पर राज्य में युद्ध करने के लिए, राज्य की सीमा बढ़ाने में व्यस्त हो गए। वो नो टेंशन, राज्य चल रहा है, मैं जाके युद्ध करूंगा, नया नया जीतूंगा, अपने राज्य को जोड़ूंगा, राज्य का विस्तार करूंगा। और इनको उन्होंने भर भर के तनख्वाह, भर भर के फैसिलिटीज और भर भर के अधिकार, वैसे राजा ही बन गए वो नवाब हुसैन राज्य में। तो उस जमाने में ना सोने की मोहरें हुआ करती थी पैसे के रूप में, क्रय विक्रय के लिए। तो इनके पास ना बड़े बड़े बोट होता ना, बोट क्या कहते हैं उसको, गलबत, हाँ नाव, बड़ी नाव जितनी होती है ना, उसमें ऐसे भर के डाला जाए फिर भी कम पड़ेगा नाव, इतना धन था उनके पास, इतना धन था, इतने धनी थे वो। और उन्होंने श्रीमद् भागवत का इतना जोरदार अध्ययन किया था, उसके अनुसार भाव से उन्होंने अपने घर में, मतलब जहाँ पर राज्य था वहाँ पर नव वृंदावन निर्माण किया था। ये तो बंगाल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो बंगाल में उन्होंने गोवर्धन पर्वत खड़ा कर दिया था, प्रकट किया था, यमुना नदी, सप्त देवालय, सारे वन प्रकट किए थे, नंदगांव बरसाना प्रकट किया था, और जैसे ब्रज में रहते थे वो एक प्रकार से। तो फिर एक दिन उनको लगा कि कितना दिन सेवा करेंगे, विफले जीव सेवे नु कृपाण दुर्जन, इनको कितनी सेवा करेंगे, वो जाना चाहिए हमको अभी, बस हो गया। राजा से विनती किया कि हमको अभी छुट्टी कर दो, रिटायर कर दो। उन्होंने कहा नहीं, नहीं हो सकता है, आपको रहना ही होगा। तो इन्होंने क्या किया, सिक लीव ले लिया, वह बीमार है अभी नहीं आ सकते काम पे, बीमारी का बहाना बना के फिर काम पे आना छोड़ दिया। लेकिन घर पे क्या चल रहा है, घर पे ये हजारों लोग बैठे हुए हैं और ये भागवत कथा कर रहे हैं। तो राजा जब अपने राज्य विस्तार के एक दौरे से लौट के आया और देखा कि काम पे नहीं आ रहे, तो घर पे गए वो, बहुत देर इंतजार किया लेकिन आए नहीं, समन्स भेजा, मतलब रिक्वेस्ट किया आ जाओ मिलना है, फिर भी नहीं आए। तो खुद राजा घर पहुंचे, कि भाई हमारे प्रधानमंत्री अर्थमंत्री बीमार है, देख के आता हूँ उनको, देखते तो क्या है, पूरी कथा हो रही है, सब लोग बैठे हुए हैं। वो नाराज़ हो गए वो, और कहा कि नहीं ऐसा नहीं अच्छा है, आपको अपना काम करना होगा। तो उन्होंने कहा नहीं हम नहीं आ सकते, तो उनको अरेस्ट कर लिया, उन्होंने अरेस्ट कर लिया, जेल में डाल दिया। और जेल में डालने के बाद में एक जेल में ये दूसरे जेल, ऐसा भी नहीं है कि एक जेल साथ में बैठे, अलग अलग जेल में डाल दिया। तो दोनों ने वो मुसलमान वो जेलर लोगों को बहुत सारा धन दे के बोला कि हमको हज करने जाना है, हज यात्रा में जाना है, अल्लाह के लिए यात्रा करनी है हमको। तो मतलब उनका मन पिघल गया, उन्होंने छोड़ दिया उनको, बहुत सारा धन दिया उनको। उसके बाद में ये सब कब हुआ पता है आपको, उनके मन का परिवर्तन कि नहीं हमको काम करना है, उनको खबर मिल चुकी थी कि महाप्रभु चैतन्य आ चुके हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो उनका दिल उनकी ओर आकर्षित हो गया, उन्होंने कहा कि हमको महाप्रभु चैतन्य के साथ जुड़ना है। तब से वो उनका शुरू हुआ। तो उन्होंने दोनों ने जब भी घूस खिला के जेलरों को, जेल से भाग गए वो लोग, तो अपना जितना बोट भर के धन था ना वो सबको बांट दिया उन्होंने, एक भी रखा नहीं अपने पास, एक भी कॉइन रखा नहीं अपने पास, एक भी मुद्रा। थोड़ा बहुत रख लेते ना कम से कम ओल्ड एज के लिए, बीमारी के लिए, सफ़र में कुछ हो गया, इमरजेंसी आ गया, ऐसा नहीं, पूरी तरह। तो सनातन गोस्वामी पहले रूप गोस्वामी चले गए भाग के, और बाद में सनातन गोस्वामी बाद में चले, तो उनके साथ और भी कुछ लोगों को अरेस्ट किया था। तो उन्होंने क्या किया था, 7 सुंदर स्वर्ण की मुद्राएं जो हैं वो अपनी जेब में रखी थी। सनातन गोस्वामी तो ऐसे ही निकले गए थे, कुछ नहीं था उनके पास, और रात को भागे भाग रहे थे जंगल से, क्योंकि मेन रोड से भागेंगे तो सब लोग देखेंगे कि अरे सनातन जी जेल में थे, वो यहाँ रास्ते पे कैसे आ गए, तो खबर करेंगे तो वापस अरेस्ट करेंगे। इसलिए अनजान रास्ते में जंगल में कांटों से भागे, तो कपड़े भी उनके फटे हुए थे, पूरे शरीर में भी ऐसा कांटों का लाइन, हाँ छेद, और ऐसे दाढ़ी बाल बड़े हुए जख्मी, ऐसे वो भाग रहे थे। तो एक जगह रुक गए थोड़ा विश्राम करने के लिए, ऐसा होटल टाइप होता ना, तो आश्रम टाइप वहाँ रुक गए। तो आश्रम का मालिक जो है वो देखता है, उसके पास कुछ कैलकुलेशन करता है कुंडली वाला, अरिस्टो क्या है एस्ट्रोलॉजी वाला, तो उसको वो बताता है कि इनके पास ना काफ़ी धन है। तो वो मालिक के जो आश्रम का है वो कहता है आ जाओ जाओ खाना खाओ रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो उनका मर्डर करके उनके पास जो मोहरे है वो लेना चाहता है। तो सनातन गोस्वामी इतने शुद्ध भक्त थे, वो तुरंत वातावरण के अंदर जो थी ना अस्थिरता, उसको वो महसूस कर लेते हैं तो कुछ गड़बड़ है। अपने सेवक को पूछते हैं हे तुम्हारे पास कुछ है, तो नहीं नहीं कुछ नहीं है। सच बता दो तुम्हारे पास कुछ धन है, हाँ 7 सोने की मोहरे हैं। मतलब मूर्ख व्यक्ति जान की जोखिम लेकर भाग रहे हो, तुमको पता है ये आश्रम का मालिक तुम्हारा सबका खून करना चाहता है मेरे साथ, क्योंकि तुम्हारे पास 7 सोने की मोहरा है। जाओ उसको खुद जाके सामने से देखे आओ और पूर्णतः कृष्ण पर निर्भर रहो। जा ही रहे वो वृंदावन की ओर, तो पूर्णतः भगवान पर भरोसा रखो कि वो आपको संभालेंगे, वो आपका उदर निर्वाह करेंगे, वो आपको क्षेम कुशल देखेंगे। ऐसा थोड़ा बहुत डाउट मत रखो मन में कि 7 मोहरे मेरे को काम आएगी रास्ता में। तो मालिक को बुलाते हैं, बोले ये लो 7 मोहरे। तो मालिक उनके चरणों में गिर जाता है, अरे बोलते हैं माफ़ करो मुझे, मैं आप सबको मार कर ये 7 मोहरे जितने भी मोहरे हैं वो लेना चाहता था। तो फिर आगे गए एकदम निर्भय होकर गए, अभी क्या होगा कौन लूटेगा, तो लूट क्या ले लो भाई, क्या है हमारे पास, बाल ही काट लो और क्या है ही नहीं कुछ है ना। तो इंसान को भय किससे होता है, कब होता है भय बताओ, जब तुम्हारे पास आसक्ति है तो भय होता है। भय का सबसे बड़ा कारण आसक्ति है। अगर मेरे पास किताब है इसमें आसक्त हूँ, कोई फिल्मी किताब है उसमें कोई, तो फिर मैं भय डर लगता है कि रात में सो जाऊँगा तो कोई चोरी तो नहीं कर लेगा, गले में अगर सोने की चैन पहनी है तो बोलेगा अरे रात को कोई उठा तो नहीं लेगा, हाथ में अंगूठी पहनी है, कोई मूल्यवान वस्तु है जिसको आपको बहुत आसक्ति है, या किसी घर पे प्रॉपर्टी में आ सकती है, पत्नी में आ सकती है, पति में आ सकती है, बच्चों में आ सकती है, तो आदमी डरा रहता है। अगर आपकी सुंदर पत्नी है या सुंदर बालक है आपका, सुंदर लड़की या कन्या आपको है, तो आप भयभीत रहते हैं कि भाई कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो सब भय का कारण जो है वो आसक्ति है। जब आदमी विरक्त हो जाता है, निरासक्त हो जाता है, तो वो निर्भय हो जाता है, क्योंकि अभी अभी खोना क्या है। भय कब होता है कि जब मेरे पास कुछ है वो खो सकता है, या मैं उसको खो सकता हूँ, या कोई ले सकता है मुझसे, जबरदस्ती चोरी जैसे भी हो, तब भय होता है। जब आपके पास कुछ भी नहीं है, आप भगवान पे निर्भर है, तो क्या आपसे कौन लेगा, क्या ले सकता है। और जो धन आपके पास में है वो कोई लूट नहीं सकता। कौन सा धन है वो? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वो धन जो है वो ना कोई चोरी कर सकता है, ना कोई खर्च हो सकता है उसका, ना कोई लूट सकता है उसको। उल्टा दिन दिन बढ़ते जाता है वो खत्म ही नहीं होता है। और कितना भी आप किसको दोगे तो भी उसका व्यय नहीं होता है, एक्सपेंस नहीं होता है उसका। ऐसे विरक्त होकर सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी वृंदावन में आए। उनके पास इतने बड़े महल थे, ऐशो आराम थे, इतना धन था, ऊपर से ऐसा पद था उनके पास, इतना अधिकार था, इतने सेवक चाकर, इतना मान सम्मान, हर चीज थी उनके पास जिंदगी में। ऊपर से भक्त भी थे, भागवत का ज्ञान भी था, लोगों को पढ़ाते भी थे, हर चीज सब परफेक्ट था उनको। फिर उन्होंने वृंदावन आने के लिए सब कुछ क्यों छोड़ दिया? क्या था ऐसा वृंदावन में? भैया तो सब धन लेके आते यहां पर, यहां पर भी एक ऐसा प्लॉट वॉट लेके बिल्डिंग बनाते, कुछ अच्छे महल बनाते, ऐशो आराम से रहते, भक्ति भी करते। ऐसा क्या था वृंदावन में इसके लिए सारा पद ऐश्वर्य मान सम्मान धन दौलत सब कुछ छोड़ के वृंदावन में आए? और वृंदावन में आके क्या किया? आसमान अपना पांगरुण, मतलब उड़ने की चीज बना दिया, दिगंबर बोलते। मतलब क्या कि जी फकीर का मतलब क्या होता है? वो आसमान ही उसका कवरिंग होता है, कंबल, खुले आसमान में सोने के लिए, पेड़ के नीचे सोने के लिए यहां पर आए हो। और कोपिन कंठा कंठा स्थित हो, एक कोपिन पहना उन्होंने, कोपिन मतलब लंगोटी, एक कोपिन पहन के घूमते थे वो। सारे वस्त्र भी त्याग दिए, एकदम संन्यास वृत्ति। और ऐसा नियम होता था सन्यासियों के लिए कि वो अगर समझो आप बोलेंगे अच्छा पेड़ है ये, फल भी अच्छे आते हैं, छाया भी अच्छी है, सोने की जगह भी अच्छी है, तो इसी पेड़ के नीचे रहते हैं, उससे पेड़ से भी आसक्त नहीं होना है। तीन दिन के बाद वो पेड़ छोड़ना है, दूसरा पेड़ जाके रहना है, पेड़ से भी आसक्त नहीं होना है। पेड़ क्या घर होता है किसी का? पेड़ भी अगर आपको लगेगा अच्छा है, इसके फल भी अच्छे हैं, छाया भी अच्छी है, तो वो भी नहीं रहना है। तीन दिन के बाद फल छोड़ देना है उसको। और रहना कैसे है? भिक्षा मांग के रहना है। सनातन जी गोस्वामी महाराज जो है ना, वो भिक्षा करते तो उनको ना आटा मिलता था, आटा, तो आटा लेकर वो जमुना जी के पानी में गूंथते थे उसको, और लकड़ी की आग जला के वो गोले ना, वो गोला होता ना अपना, कहते पोली ची गोली, वो उसको भूनते थे, ऐसे सीधे डालते थे लकड़ी के अग्नि में। फिर वो बोलते ना क्या बोलते हैं, बेकिंग, बेकिंग, वो क्या उसको हिंदी में बोलते हैं, उसको पकाते थे उसके अंदर, और ऐसे ही खाते थे बिना नमक के, वो उनका भोजन था। क्यों छोड़ दिया सब कुछ? ब्रज में क्या था इतना? अगर ब्रज में उनके उनके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, बोलो हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं क्या कह रहा था, वो चीज क्या है ब्रज में कि वो सब कुछ इतना धन दौलत छोड़ के यहां भिक्षा मांग के रहने के लिए वो आए, क्योंकि यहां पर जो रज है उसके अंदर राधा कृष्ण की भक्ति का पूरा रहस्य छुपा हुआ है, उस रज का आश्रय लेने के लिए यहां पर आए हो। और वो धन प्राप्त करने के लिए आए जो जो उनके पास पहला धन था उसके सामने अनंत धन, ऐसा कहा जाए कि इस धन के सामने वो धन तुच्छ था, वो धन प्राप्त करने के लिए वो यहाँ पर भिक्षुक बने सारा ऐश्वर्य छोड़ के। सारा धन लेकर क्यों नहीं बने? क्योंकि अगर आप सारा आसक्तियाँ संभाल के रखते हैं अपने पास तो भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। आप दोनों दो नाव पर पाव रखना मुमकिन नहीं है, दोनों नाव पर धन दौलत भी ऐश्वर्य मान सम्मान भी चाहिए और भगवान की भक्ति भी चाहिए, ऐसा नहीं होता है। आपको दोनों में से एक ही चुनना पड़ेगा, दोनों कदम रखे चलेंगे तो डूब जाएंगे बीच में। तो ये धन दौलत जो है इस ब्रज रज में समाई हुई है। इस ब्रज में केवल वही नहीं आए, बाकी सारे भी आए। उन नरोत्तम दास ठाकुर भी राजकुमार थे, राजकुमार मतलब राजा के पुत्र थे, पूरा ऐश्वर्य उनका था, छोड़ के आ गए वो। अरे यहां तक कि अभी अभी के हमारे गुरु जी के किताब में लिखा है ना, वो घनश्याम दास बाबा इतने विरक्त थे वो, लेकिन वो राजकुमार थे, अपने राजा पिताजी माता के साथ घूमने के लिए ब्रज में आए थे, यहीं रह गए वो। बहुत झगड़ा किया उन्होंने लेकिन नहीं गए साथ में उनके, और इतने गरीब फकीर बने वो राजपुत्र। सोचो आप जरा, रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज वो भी राजपुत्र थे। आज से अराउंड 400 साल पहले उनके पिताजी और चाचा का महीने का इनका मालूम कितना था? 12 लाख सोने के मोरे, 12 लाख गोल्ड कॉइन्स महीने का इनकम था उनका। आज भी अगर 12 लाख हो तो भी बहुत हो गया, आज के तारीख में 400 साल पहले की बात कर रहा हूँ। कितने धनी होंगे वो, उनके राजपुत्र था, अकेला सारा उसका ही था। उसके बाद में अगर खाली वो रहता वहाँ पर तो भाग गया वो सब छोड़ के, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। स्वर्गीय सुंदरी सर्वगुण संपन्न स्त्री के साथ विवाह किया गया उसका, फिर भी रुचि नहीं, भाग रहे महाप्रभु चैतन्य के पीछे। तो पिताजी बोल रहे बांध के रखो इसको, बार बार भागता है। तो माता बोलती है अरे जो चैतन्य महाप्रभु के कृष्ण प्रेम के आंदोलन से प्रभावित हो गया है उसको दुनिया की कौन सी दौलत, कौन सी श्रृंखला, कौन सी साखल बांध सकती है उसको? जाने दो उसको, उसका दिल वो चला गया है तो उसको आप संसार में बांध नहीं सकते हैं। तो ये सब लोगों ने अपना इतना बड़ा ऐश्वर्य छोड़कर यहाँ पर फकीर बनना पसंद किया, क्योंकि वृंदावन धाम जो है ना उसमें ऐसी दौलत अवेलेबल है, उपलब्ध है, जो किसी भी दौलत की तुलना नहीं कर सकते उसके साथ। गुरु महाराज बताते हैं कि ऐसा क्या था इस रज के अंदर, इस रज के अंदर श्री कृष्ण प्रेम छुपा हुआ है। और जो हमारी दुनिया की वेल्थ है जिसको हम नोटों में गिनते हैं या सोने में गिनते थे पहले, उसमें से दुनिया की कोई भी समस्या समाधान नहीं हो सकती है। देखो जन्म की पीड़ा, आपको रुपया देके भी डिलीवरी करना है लेकिन मम्मी का दर्द मम्मी को होगा ही, होगा कि नहीं? डॉक्टर डिलीवरी करते हैं, सब कुछ पैसा ले देते हैं लेकिन दर्द की गोली, लेकिन मम्मी को डिलीवरी का दर्द जो है वो सहन करना ही है, वो टाल नहीं सकते। और अगर वो नहीं डाल कर टालना है, आपको सिजरन करना है तो उसका दर्द सहना है, दर्द सहना ही है आपको, मुक्त नहीं हो सकते उससे। बुढ़ापे का जो बीमारी है, कितना भी दवा लो बूढ़ा आदमी अपना कष्ट उसको सहना ही पड़ता है। और रोग होता है रोग, तो आप रोग की इलाज करते हो, सब कुछ करते हो, एंटीबायोटिक लेते हो, क्या क्या करते हो, लेकिन रोग की जो पीड़ा है वो आपको होनी है। 5 दिन का एंटीबायोटिक स्कोर करके ठीक हो जाएंगे, लेकिन 5 दिन में आपको सर्दी खांसी के बुखार का कष्ट होना ही है। दुनिया के किसी भी प्रभाव से, कॉन्टैक्ट से, धन से आप जन्म मृत्यु बीमारी बुढ़ापा ये कष्ट मिटा नहीं सकते। कितना भी धनी प्रभावशाली व्यक्ति होगा, पढ़ा लिखा, मृत्यु को टाल सकता है क्या वो? मृत्यु आएगी तो आएगी। तो दुनिया का धन इस तरह से फ्यूटाइल है, यानी कि निरर्थक है, बेकार का है। क्यों? क्योंकि जीवन की मूलभूत समस्याओं का समाधान इस दुनिया के वेल्थ से निवारण उसका नहीं हो सकता है। इसको, इस तत्व को जानकर रूप गोस्वामी आदि, सनातन गोस्वामी आदि 6 गोस्वामियों ने और सारे गोस्वामियों ने सब कुछ छोड़कर ब्रज में आए। वो ताज बीबी नाम की एक रानी थी, मुसलमान रानी, उसने बहुत सुना था कि ब्रज में एक बालक है नीलासा, सब लोग उसके पीछे पागल है। तो जमुना जी में बोट से आई थी वो घूमते घूमते, तो जब जमुना जी में कालिया घाट के पास आई तो उसको सुंदर सुंदर भजन सुनाई पड़े, तो मोहित हो गई वो, उतर गई बोट से और बांके बिहारी के मंदिर गई। और इतना मोहित हो गई, सब छोड़ दिया उसने रानीपन अपना और यहीं रह गए फकीर बनकर। ऐसे कितने उदाहरण है, रस खान, ताज बीबी, बहुत सारे अद्भुत उदाहरण है ब्रज में। सब लोगों ने एक काम किया, अपना पुराना ऐश्वर्य सारा छोड़कर यहां पर एकदम निर्धन बनकर भजन किया है। और भजन होता भी तभी है जब हम निर्धन सत्सी बन जाते हैं। जरूरी नहीं कि हमको धन सब छोड़ देना है, लेकिन मन से दीन रहना है। तो वही वृंदावन है जिसमें ये सारे लोग अपना धन दौलत ऐश्वर्य पद प्रभाव मान सम्मान सब छोड़कर आए और भजन किया उन्होंने, यहां पर भगवान की सेवा किया। तो वो राधा कृष्ण की प्रीति भक्ति, भगवान की भक्ति प्राप्त करना, ये जीवन का उद्देश्य जो है वो इस रज में आकर सफल होता है। ये बहुत जरूरी है समझना। और वो प्राप्त करने के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने। जीवन का सबसे बड़ा धन क्या है, वो है राधा और कृष्ण भगवान की भक्ति और सेवा, और उसके बाद में उनको प्रसन्न करने के लिए उनके भक्तों की सेवा। और जब हमें सेवा करने का मौका प्राप्त होता है वो हमारी सबसे बड़ी प्राप्ति है, अपॉर्चुनिटी। अगर मौका ही नहीं तो हम सेवा करना चाहते हैं पर सेवा कर नहीं सकते, नहीं मौका ही नहीं है। तो ये मौका हमारे लिए भगवान ने इस ब्रज भूमि में उपलब्ध कराया है, चाहे कोई भी अरेंजमेंट करता हो, लेकिन हम सबको यहाँ पर एक मौका प्राप्त हुआ है कि हम लोग कहाँ से दूर दूर से आते हैं। इस कैंप की विशेषता देखो आप, विदेशी भी आते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग भी आते हैं इसमें, बिना पढ़े लोग भी आते हैं इसमें, शहर से लोग आते हैं इसमें, गांव से लोग आते हैं इसमें, बुद्धिमान लोग आते हैं इसमें, सामान्य लोग आते हैं इसमें, स्त्रियां आते हैं पुरुष आते हैं, विदेशी आते हैं देशी आते हैं, हर प्रकार के लोग इकट्ठा होते हैं यहाँ पर, ये इसकी विशेषता है। सब लोग इकट्ठा क्यों होते हैं, सब लोग ब्रजवासियों की सेवा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। वो जो भगवान को अति प्रिय हैं उनको उनको सेवा देने के लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं। और ऐसी व्यवस्था की गई है कि आपको पहले ज्वाइन करना है, बस रजिस्टर करना है और ज्वाइन करना है, आपको सेवा मिल जाएगी यहाँ पर। कुछ लोग विद्यार्थी के रूप में आते हैं, उनको भी सेवा मिल रही है। ये हमारे जीवन की परम पूंजी है। हमको लगता होगा 8 दिन सेवा करेंगे तो अच्छा लगता है इसलिए कर रहे हैं, लेकिन इसमें जीवन भर की पूंजी इकट्ठा करके हम जा रहे हैं। आज हमारा कैंप का ये शाम का आखिरी प्रवचन है, तो इस दिन इस समय हमको इस सार पर विचार करना है कि हम यहाँ पर क्यों आए और क्यों आना चाहते हैं और क्या हासिल किया हमने। वो सेवा जो है उसका कोई मोल नहीं होता है, कोई तनख्वाह नहीं होती है। अगर तनख्वाह होती है तो उसको जॉब कहते हैं, नौकरी कह सकते हैं हम लोग। सेवा में कोई अपेक्षा नहीं होती है, ये भी अपेक्षा नहीं होती कुछ कृपा मिलेगी, ये भी अपेक्षा नहीं होती है। उसका एक स्टोरी है कृष्ण लीला में, वो जो फल वाली आई थी भगवान के पास, तो उसने भगवान को भर भर के फल दिए, इतने आकर्षित हो गई वो। और कुछ समय बाद में टोकरी में पूरे गहने मिले, है ना, ये हमने पढ़ा है, सुना भी है, मैंने भी बताया है। लेकिन उस फल वाले के मन में कभी भी उसके फल के बदले में गहने मिलेंगे ऐसी अपेक्षा नहीं थी, और वो गहने मिलने के बाद भी बहुत खुश नहीं हुई थी कि वाह अच्छा हुआ फल दिए, देखो कितना धन मिला। वो उस गहनों से भी आसक्त नहीं थी, उसका दिल कृष्ण ने छीन लिया था तो गहने उसको आकर्षित नहीं कर सके। वो गहने टोकरी में प्रकट क्यों हो गए, वो तुम्हारे हमारे को जरा प्रेरणा मिल देने के लिए हुए। वो उसने वो फल वाले को प्रेरणा नहीं दिया, फल वाले खुशी से नाचने लगे नहीं कि मैं अभी कल फिर से फल लेके जाती हूँ तो फिर और टोकरी मेरी गहनों से भरेगी। ऐसा वर्णन आता है कभी क्या कि फल वाली जब टोकरी भर गई, टोकरी खाली की, फल से भरा और दोबारा गई, अरे फल ले लो तो कृष्ण आएंगे और फिर दोबारा मेरा मेरा टोकरी जो है गहने से भर देंगे। नहीं, अगर ऐसा उसका भाव होता तो वो आगे दोबारा आती फल लेकर, लेकिन नहीं आई वो। लेकिन भगवान ने फिर भी उनको टोकरी भर गहना दिया। क्यों दिया? ताकि हम जो पढ़ेंगे ना उसको, तो हमको लगेगा कि भगवान को देने से किसी का नुकसान नहीं होता है, तो हम भी देने के लिए प्रवृत्त हो जाएंगे। उसने कभी भी फल देते हुए ये सोच कर नहीं दिया था कि मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा इसमें, दे दो हमारा रिजल्ट आएगा अच्छा, नहीं, वो तो निरपेक्ष भाव से दे रही थी। वैसे हमको भी जब भक्तों की हम सेवा करते हैं निरपेक्ष भाव से सेवा करनी चाहिए। जितनी निरपेक्ष हम बन जाते हैं उतनी भर भर के कृपा मिलती है। कृपा का मतलब क्या? जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा प्राप्त होता है, उसको कृपा कहते हैं। और कौन कृपा दे रहे हैं? मैं आपको कहूंगा, मैं आपको कृपा करता हूं कि आप जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं मुक्त होंगे आप, क्योंकि मुझमें वो शक्ति और अधिकार नहीं है। जन्म मृत्यु से मुक्त करने का अधिकार केवल भगवान कृष्ण को है, जिसका नाम मुकुंद है। मुकुंद का अर्थ होता है जो मोक्ष देने वाला है, वही दे सकता है। ब्रह्मा शिव देवता कोई नहीं दे सकता है। बोलेंगे तो भी इसका प्रूफ है, हिरण्यकश्यप ने पूछा ब्रह्मा जी को वरदान मांगने पर, वरदान मांगो, तो बोला कि मुझे अमर कर दो। तो ब्रह्मा ने कहा सॉरी, मैं खुद अमर नहीं हूं, आपको कैसे अमर करूंगा। रावण ने भी शिवजी से ये मांगा था अमर करो, तो शिवजी ने कहा नहीं कर सकता हूं, तो मैं खुद भी, मेरी आयु फिक्स है, बिगिनिंग और एंड है उसका। अगर उसके पास शक्ति हो तो पहले बोलते तथास्तु, अमर हो जाओ, लेकिन नहीं हो सके वो। श्री कृष्ण भगवान के अंदर, एक ही व्यक्ति के अंदर वो शक्ति है मोक्ष देने की। तो हम उस व्यक्ति की प्रसन्नता चाहते हैं सेवा करके, उस व्यक्ति के भक्तों की प्रसन्नता चाहते हैं सेवा करके, जो व्यक्ति हमें इस जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त करा सकता है। लेकिन आगे जाकर ऐसा कहा गया है कि जब भक्ति भक्त बहुत प्रगति करता है अपनी सेवा में, तो कहता है मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर अहेतुकी त्वयि। वो आगे जाकर बोलता है मोक्ष भी नहीं चाहिए मुझे, आप जहां रखना है वहां रखो, पृथ्वी पर रखो, नरक में रखो, स्वर्ग में रखो, और जहन्नुम में रखो, जहां रखना है रखो, अपनी सेवा में रखो। भवतात् भक्तिर अहेतुकी त्वयि, आपकी अहेतुकी भक्ति प्राप्त होती रही है, यही एकमात्र तमन्ना है। जब वो कहता है जन्मनी जन्मनीश्वर, मतलब क्या? मोक्ष नहीं हो रहा ना बीच में, जन्म जन्मांतर का मतलब क्या? बार बार आ रहा है वो, मुक्ति नहीं प्राप्त हो रही है, तो मुक्ति भी नहीं मांगता है वो, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए बोलता है। ये भक्ति की चरम सीमा है। इतना भक्त निरपेक्ष हो जाता है। गोपियां तो आगे जाकर बोलती है कि आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टु माम, आप हमें कुचल दो अगर आपकी इच्छा है तो, अगर आपकी इच्छा है तो मिलो, गले लगाओ या ठुकरा दो, पास बुलाओ, दूर भगाओ, जो करना है वो करो, लेकिन हम आपके सेवक बने रहेंगे और आप हमारे आराध्य प्राणेश्वर बने रहेंगे। ये चरम सीमा है, रेवोल्यूशन है ये पूरा। किसी को बताएंगे शुरुआत में तो भाग जाएगा वो, बोले ये हमको इधर नहीं आना है। बोले कुचल दो, अरे को किसको कुचलना है? अपने आप को। लेकिन ये स्वतः अपने आप स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसे परम भक्त गोपियां हुई है, भगवान के चरणों में समर्पित करने के बाद वो सब कुछ सहने को तैयार है। ऐसा नहीं बोलते कि मैंने भगवान का नाम का जप किया, इतना त्याग किया, इतना फकीर बना मैं, इतना भक्ति किया, क्या मिला मुझे, कुचला गया मैं, नष्ट हो गया, उध्वंस हो गया मेरा। यही भक्ति करने से प्राप्त होता है, इसी को, इसलिए मैं भक्ति में आया था, नहीं करना है मुझे भक्ति, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन भक्त जब प्रगति करता है तो वो कुछ भी अपेक्षा भगवान से रखता नहीं। तो हमें भी ऐसे ही निरपेक्ष होकर ब्रजवासियों की सेवा करनी चाहिए। जब हम निरपेक्ष होकर सेवा करेंगे, भगवान आपको और देंगे और देंगे और देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये खुद के लिए कुछ स्वार्थ में रखेगा नहीं, जो भी देगा दूंगा वो भगवान की सेवा में, उनके भक्तों की सेवा में ही लगा देगा उसको। वो ना वो परछाई की तरह होता है, आप जितना परछाई की ओर भागोगे परछाई दूर भागेगी आपसे, और परछाई को छोड़ के आप चलो परछाई आपके पीछे पीछे चलेगी। हैव सीन दैट? हमने कभी अनुभव किया है? शैडो को पकड़ने को जाएंगे, शैडो दूर चले जाती है, और शैडो को छोड़ के चले जाओ तो आपके पीछे पीछे आती है। उसी तरह से आप धन को जितना पकड़ने की कोशिश करोगे, धन आपसे हाथ से निकलता रहेगा हमेशा। एक बार धन को छोड़ कर देखो, धन आपके पीछे भागेगा। जो भक्त होता है उसके पीछे पीछे भुक्ति और मुक्ति, भुक्ति यानी ऐश्वर्य, पैसा धन दौलत सब, और मुक्ति, मुक्ति मतलब जन्म मृत्यु से मुक्ति, ये दोनों देवियां उनके पीछे पीछे भागती है। जब तक भक्त भगवान की ओर जा रहा है, दोनों उसके पीछे पीछे जाती है। एक बार भुक्ति मुक्ति के लिए टर्न हो गया तो वो भाग जाती है। तो लाभ किस में है? परमार्थ में ही स्वार्थ छिपा हुआ है। अगर आप परमार्थ में लगेंगे, आपके सारे स्वार्थ अपने आप पूर्ण हो जाएंगे। तो यही हमारे आचार्यों ने हमको सिखाया है, भगवान ने गीता में सिखाया है। और ये सारा रहस्य जो है, इसको हम अनुभूति कहते हैं, साक्षात्कार कहते हैं, रियलाइजेशन कहते हैं। अंदर से आपको पता चल रहा है कि ऐसे ऐसे है, ये सारा रहस्य जो अनुभूति का है इस रज में छुपा हुआ है। ये रज जो है ना यहाँ की, इतनी कीमती है, इतनी कीमती है। कि आपको सभी वैकुंठों का ऐश्वर्य भी दिया गया, अनंत वैकुंठ है। आपको थोड़ा बता दे उसके बारे में। ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी एक 14 लोकों का एक हिस्सा है, 14 भुवन है इसके अंदर, 7 स्वर्ग लोक है, 1 पृथ्वी लोक है और 6 नरक लोक है, हाँ निचले के प्लैनेट्स हैं। ये मिलके एक ब्रह्मांड बनता है, ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड नहीं है, हम तो एक ब्रह्मांड के एक पृथ्वी पर बैठे हुए हैं, अनंत ब्रह्मांड है। वो सारे ब्रह्मांड जो है वो कारण सागर में तैर रहे हैं और कारण सागर के मालिक कारणोदय साई विष्णु हैं। उसके बाद में विरजा नदी है, उसको पार करेंगे जीव तो वैकुंठ में पहुंच जाएगा वो, और एक वैकुंठ नहीं अनंत वैकुंठ है, ब्रह्म ज्योति में तैर रहे हैं सब। और सारे वैकुंठों के बीच में गौलोक वृंदावन है जिसमें कृष्ण भगवान रहते हैं, और सारे वैकुंठों में विष्णु रहते हैं अलग अलग प्रकार के, अनंत विष्णु है, एक एक वैकुंठ का नियंत्रण करते हैं। तो उस एक एक वैकुंठ में एक एक लक्ष्मी रहती है, उसके पास में इतना ऐश्वर्य है, इतना ऐश्वर्य है, इतना ऐश्वर्य है कि एक बार झूठ मूठ की लड़ाई में लक्ष्मी देवी का एक कंगन टूट गया था, होता है ना कभी कभी, तो उठाकर उसने फेंक दिया, उसको नहीं चाहिए सर, गुस्से से फेंक दिया। वो टूटे हुए लक्ष्मी के कंगन के ऊपर इस पूरे ब्रह्मांड का इकोनॉमिक्स चल रहा है, और ऐसे बहुत सारे कंगन पहनती है वो, दोनों हाथ मिलकर बहुत सारे, गले में पहनती है, कमर में पहनती है, कान में पहनती है, सर पे पहनती है, गले में पहनती है, पाँव में पहनती है, एक लक्ष्मी है ऐसी। और लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्य मानव, ऐसे कोटि कोटि लक्ष्मियां एक भगवान की सेवा करते रहती है, बोलो आप। तो इस सारे वैकुंठ का जितना ऐश्वर्य है ना, वो सारा भी आप इकट्ठा करोगे तो शास्त्र में लिखा है कि यहां के रज का एक कण भी सब खरीद नहीं सकते, ये इसकी महिमा है। और ये कण जो रज का है ये देवताओं को प्राप्त नहीं होता है, यहां का रज का कण, देवता ब्रह्मा शिव आदि देवता भी लालायित रहते हैं यहां के रज प्राप्त करने के लिए। देखो उन्होंने 120,000 साल तपस्या किया इस रज को प्राप्त करने के लिए, इतना महान धाम है ये भगवान का। तो बिना पुण्य के और बिना कृपा के यहां पर कोई आ नहीं सकता है, जब तक राधा रानी परमिशन नहीं देती है तो यहां पर कोई आ नहीं सकता है, देवताओं को प्रवेश नहीं है, हम लोगों को प्रवेश मिला है। ये 100% कृपा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, 100% मर्सी ऑफ द लॉर्ड। हमने ऐसा कोई तपस्या किया है क्या? हमने कितने गुरुओं का चरित्र पढ़ा है, उसमें लिखा है कि 12 वर्ष वो घर छोड़ के हिमालय में ढूंढते रहे, यहाँ गए, इस धाम में गए, उस धाम में गए, 12 वर्ष के 14 वर्ष के तप के बाद में गुरु की मुलाकात हुई और गुरु ने अनुग्रह दिया, तब जाकर दिशा प्राप्त हुई। ऐसा हमने कुछ तपस्या किया क्या? मैंने तो नहीं किया है, मुझे जो भी मिला है ना वैसे ही बोनस में मिला है। मैं ऐसे ही कॉलेज में था, मेरा एक फ्रेंड था वो डिवोटी बना, मेरा क्लासमेट फ्रेंड था वो डिवोटी बना, फिर उसने मुझे बहुत समझाया, मैंने बहुत झगड़ा किया उसके साथ एक साल भर, इसका मतलब कृपा मिल रही थी और मैं झगड़ रहा था उसके साथ, नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, तो चला जा यहाँ से, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, दोबारा मत आना, ऐसे ऐसे हमने तपस्या, हमारी ये तपस्या है। इस तरह से हमको भजन प्राप्त हो गया, भगवान का नाम प्राप्त हो गया है। तो कहीं भी हमारे इतिहास में ऐसा नहीं कि हमने घरदार छोड़ के जंगल में जाके ध्यान किया था, भगवान की खोज में भटक रहे थे हम यहाँ वहाँ, फिर जाके कहीं प्रकाश दिखा और कोई संत मिला, उसने कृपा कर दिया तो हम भक्त बन गए, ऐसा हमारा कोई इतिहास है ही नहीं। हमने किसी ने ऐसा तड़पे नहीं भगवान के लिए हम, कि नहीं हमको जाना है। इस रघुनाथ गोस्वामी कैसे इतने बड़े धनी आदमी के राजपुत्र थे वो, लेकिन भागते थे हमेशा महाप्रभु जी की खोज में सब कुछ छोड़ के। हमने तो ऐसा कभी किया नहीं, हम तो इकट्ठा करने में लगे हुए। तो ये सब कृपा है, तो बार बार भी आप आते हैं हम लोग तो को भी कृपा है, सेवा मिल रही है वो भी कृपा है, क्योंकि भगवान के भक्तों की सेवा प्राप्त करने के बाद जो भगवान का कृपा हम प्राप्त करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, वो सबसे बड़ा धन है हमारा। हमारे गुरु महाराज राधानाथ स्वामी, एक कहानी है यहाँ की बरसाने, तो कहानी तो अनंत कहानी है यहाँ की कृपा की, हाँ प्रैक्टिकल कैंप में प्राप्त होने वाले एक्सपीरियंसेस ऐसे अनंत कहानियाँ हैं, लेकिन एक कहानी हमारे गुरुदेव पूरे वर्ल्ड में जाके बताते हैं, जहाँ जहाँ भी गए, अमेरिका गए, इंग्लैंड गए, यूरोप गए, इधर कॉन्फ्रेंस में गए, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस में बोलते, तो उसमें उन्होंने एग्जाम्पल लेते हैं वो। अभी भी आई कैम के बीच में वो वीडियो फिल्म हमारे व्हाट्सएप पे आया था गुरु महाराज का। मैं क्या बताते हूँ कि मुंबई के हमारे बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर जुगल शाह, उन्होंने एक बुढ़िया का ऑपरेशन किया यहाँ पर। एकदम अनपढ़, गंवार, बुढ़ी, लगता है 200 साल की उम्र की होगी, इतना शरीर उसका जर्जर था। तो ये यहाँ पर आए, मुंबई में बहुत पैसा कमाते हैं अपने बिजनेस में, अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत बहुत नामचीन डॉक्टर हैं, फेमस डॉक्टर हैं, दिन में हजारों लाखों का इनकम होता है कभी कभी। वो छोड़कर यहाँ पर बिना एक रुपये का लाभ लेते हुए फ्री सेवा करने के लिए आते हैं। दो दिन रहे तो अमुक इतना लॉस, चार दिन रहे तो उतना लॉस, ऐसे इधर आके सेवा करते हैं और ऐसे बूढ़े गरीब लोगों की ऑपरेशन करते हैं। तो ऑपरेशन कर दिया तो वो बुढ़िया इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई। अभी वो तो गांव की औरत है, उसके सर पे मारने लगी जोर जोर से, बहुत जोर से मार लगी। अब बोल रहे, मैं आपको आशीर्वाद देते हूँ, आपको राधा रानी कृपा करे, राधा रानी भक्ति दे आपको, धाम का निवास दे, राधा रानी अपना भक्ति आपको दे, ऐसा करके जोर से मार रही है सर पे। और डॉक्टर रो रहा है, तो आपको लगेगा मार रहा है इसलिए रो रहा है क्या? नहीं, भाव से रो रहा है वो। बोलते मैं मुंबई में इतना पैसा कमाता हूँ, इतने ऑपरेशन करता हूँ, लेकिन ये सेटिस्फेक्शन, समाधान, आनंद का अनुभव यहाँ पर जो मिलता है फ्री में करने से, बॉम्बे में पैसा लेकर भी नहीं मिलता है। अभी डॉक्टर भी हमारी हॉस्पिटल के डॉक्टर यहाँ काम करने को आए थे, आँखों के नहीं थे, जनरल डॉक्टर थे, वो वार्ड में काम करते थे। वो भी कहते हैं कि यहाँ पर हम लोग अपना लीव लेकर आते हैं, कुछ इनकम का त्याग करके आते हैं, हम लोग वहाँ नहीं बैठेंगे तो प्रैक्टिस नहीं होगा, उतना इनकम नहीं होगा हमारा, लेकिन फिर भी जब हम यहाँ पर आते हैं और निरपेक्ष भाव से फ्री में सेवा करते हैं तो वो जो समाधान मिलता है वो वहाँ पर बड़ी तनख्वाह लेकर भी नहीं मिलता है, बड़ा इनकम लेकर भी नहीं मिलता है। ये कहते हैं हकीकत है। वो चार दिन लेकर सेवा करते हैं तो जो अनुभूति होती है, ये दो लेडी डॉक्टर थे, उन्होंने बताया कि जो अनुभूति होती है ना कि हम लोग कितने तुच्छ हैं इन लोगों के सामने। हम सोचते हैं हम डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, धनवान हैं, ऐसे हैं, शहर के हैं, बुद्धिमान हैं, वैसा ऐसा फलाना सोचते हैं हमारे बारे में, लेकिन यहाँ पर आकर इन सो कॉल्ड तथा कथित जो गंवार है, गरीब है, सुंदर नहीं है, अनपढ़ है, इन लोगों को जब देखते हैं तो पता चलता है कि हमसे कितने महान लोग हैं ये, आत्मा के स्तर पर कितने डेवलप्ड हैं, कितने प्रगत हैं और हम कितने न्यून हैं उनके सामने, इसकी अनुभूति होती है। और समझो मैंने आपको नीचा दिखा दिया कि आप कितने घटिया आदमी हो, तो आपको सुख होगा क्या? अपमान होगा आपका, गुस्सा आएगा आपको। लेकिन इनको खुद को नीचा छोटा प्राप्त महसूस करके बड़ा आनंद हो रहा है। कितना विपरीत है ना, आप कुछ लोगों को मिलते हो और वो आपके सामने एकदम गंवार, अनपढ़ ऐसे दिखते हैं, कुरूप भी हैं और कुछ कल्चर्ड भी नहीं है, ऐसा आपको लगेगा, लेकिन आपको लग रहा है कि मैं इनसे भी नीचा हूँ, ये कितने महान लोग हैं। तो आपको लगेगा अरे भाई मैं इन लोगों को वापस नहीं मिलूंगा, क्योंकि मेरे को इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है इनको मिलने के बाद, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन इनको खुद को नीचा अनुभव करके बड़ा आनंद की प्राप्ति हो रही है, जो शहर में आपको नहीं होगी प्राप्ति। तो अद्भुत अनुभव होगा कि नहीं? वो ऐसे वो उसके उसके सर पे मार मार के उसको आशीर्वाद दे रही है और ये रो रहे हैं। बोलते यही धन है जीवन का, ये हमारी पूंजी है, ये हमारी वेल्थ है जो हम यहाँ से लेके जा रहे हैं, क्योंकि बम्बई में, मद्रास में, दिल्ली में, हैदराबाद में कोई आशीर्वाद देता नहीं है, केवल गाली देते हैं। क्या अनुभव है आपका? एक साल में कितना अनुभव आपको मिलता है कि लोग आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, दुलाल रहे हैं, प्रेम से बोल रहे हैं, भगवान भला करे आपका, कुटुंबों को भला करे। मेरा एक वीडियो रिकॉर्डिंग है यहाँ का फिल्म में, उसमें वो जो ब्रजवासी औरत है वो जो आशीर्वाद दे रही है, बेटा राजा बनो, आप राजा राज करो, राजा बन के बोलो, राजा बनने का आशीर्वाद दिया मुझे उसने, रिकॉर्डेड है वीडियो में, देख सकते हैं आप। खूब राज करो, खूब, अरे क्या बड़े बड़े उनकी सेवा किया आपने, अरे राज करो आप, है ना? कौन दे सकता है? वो साल भर में आपको समझो ढूंढ ढूंढ के आशीर्वाद काउंट करेंगे ना, तो यहाँ के 7 दिन में आपको जीवन भर का पूंजी आशीर्वाद का प्राप्त होता है, 7 दिन के अंदर, जो इधर 1 साल में भी आपको एक दो मिलेगा नहीं, जो मिलेगा वो गाली और बुरे शब्द ही मिलेंगे लोगों के। कितना फर्क है देखो, आप पैसा मिलेगा बहुत आपको, लेकिन आशीर्वाद नहीं मिलेगा, दुआ नहीं मिलेगी किसी की, यहाँ पर वो दुआ मिलती है, वो आत्मा का धन है, वो आपको संतुष्ट करेगा। तो उसी को आप अटैच हो जाओ। और सेवा कौन सी कर रहे हो उससे अटैच होने के बदले में सेवा भाव से जुड़े रहो आप, कि सेवा मिले चाहे कोई भी मिले लेकिन सेवा मिलती रहे। सेवक का गुणधर्म क्या होता है, वो कभी भी सेवा के फल की अपेक्षा नहीं करता है और सेवा में चॉइस नहीं करता है, वो जो मिलेगा वो करता है। बस सेवा देते रहो, लगाए रखो हमको चरणों में। हनुमान जी ऐसे सेवक थे, पता है आपको? हनुमान जी ऐसी सेवा करते थे कि एक दिन लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और बाकी सारे राम भक्त लोग, सीता देवी भी इकट्ठा हो गई और उन्हें मीटिंग किया। अरे बाप रे, ये ऐसा सब जगह पे घुसे हुए हो, कोई सेवा छोड़ी नहीं इन्होंने। तो हमको ना बड़ा दुख होता है ऐसे कि भाई सारी सेवा खुद करता है, हमको देता ही नहीं सेवा। तो उन्होंने क्या किया ना, उनको ना सब उनकी सेवाएं उन्होंने बांट लिया एक दिन, लक्ष्मण ने, सीता ने, क्योंकि ये अरे बेडरूम में भी है, ये इधर भी है, उधर भी है, दरबार में भी है, हर जगह पर है इनकी सेवा है। तो उन्होंने एक बार सब सेवा बांट लिया, उसका सारा सेवा खुद बांट लिया उस हनुमान जी को, सेवा ही नहीं बचा। हनुमान जी हार जाते हैं, हनुमान ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, बोले एक सेवा बची हुई है जो मैं करूंगा, वो जब राम जमाई देंगे ना तब मैं चुटकी बजाऊंगा, वो सेवा किसने लिया नहीं मैं लूंगा। अभी राम जमाई कब देंगे मालूम है क्या किसी को? दिन में देंगे, शाम को देंगे, अभी हम लोग कथा में बैठे तो भी कुछ जमाई देते लोग है ना, पार्लियामेंट में भी कितने फोटो व्हाट्सएप पे आते हैं कि मंत्री सोया हुआ है जमाई दे रहा है, मिनिस्टर जमाई दे रहा है, प्रधानमंत्री जमाई दे रहे हैं, अर्थमंत्री जमाई दे रहे हैं। तो वो जमाई ऐसी चीज़ है, वो कब आएगी किसको मालूम। तो ये दरबार में बैठे हैं, दरबार में से बेडरूम में भी ऐसे बैठे हैं, खाने के बारे में ऐसे बैठे हुए हैं, हर जगह ऐसे बैठे हुए हैं। तो सब लोग हार गए, बोले हनुमान जी जय हो आपकी। सब सेवा वापस दे दिया उनको। अरे जिसको सेवा करना है उसको सेवा के लिए कुछ कमी है क्या, वो ढूंढ के ही निकालेगा बराबर से। और उनको भगवान राम को प्रसन्न करने की इतनी तीव्र इच्छा थी, इनोसेंट एकदम सरल हृदय, कि मेरे भगवान को प्रसन्न करना है मुझे बस। तो एक बार ऐसे जा रहे थे तो सीता मैया को ना श्रृंगार करते हुए देखा। तो सीता मैया क्या कर रही है, सब श्रृंगार पूरा हुआ तो लास्ट में अपने मांग में सिंदूर भर रही है वो, बीच में मांग। अबे आजकल लड़के इधर भी करते इधर भी करते हैं, वो इधर सिंदूर लगाते। मैंने आज मंदिर में एक औरत को इधर सिंदूर लगा देखा, बोले ये क्या चीज़ है, ये बोनाफाइड नहीं है, इधर मांग होना चाहिए, उधर सिंदूर भरना चाहिए। तो वो सीधा सीधा देवी सिंदूर भर रही है। तो ये पूछते हैं मैया ये क्या कर रही हो, बोले मांग में सिंदूर भर रही हो। बोले ये क्या है, इसमें क्या होता है, बोलते ये सौभाग्य का चिन्ह है सिंदूर भरना। तो फिर क्या होता है, अभी क्या बताए बंदर को। तो कहते हैं कि जब मैं ये लगाती हूँ तो राम जी को बड़ा आनंद होता है। थोड़ा समझाने के लिए बता दिया उसको कि भाई ये जब मैं भरती हूँ ना अपने मांग में तो प्रभु रामचंद्र जो है बड़े खुश हो जाते हैं। बोला अच्छा बहुत बढ़िया चीज़ है, अभी कहानियाँ समाप्त नहीं होती। अगले दिन भगवान जिस रास्ते से दरबार में जा रहे हैं ये पूरा शरीर को सिंदूर लगा के बैठे हैं और दुनिया हंस रही है उसको देखिए। उन्होंने क्या सोचा, इतना सिंदूर लगाने से अगर खुशी हो रही है तो मगर पूरा लगाऊं तो कितनी खुशी होगी, इसलिए आज भी हनुमान जी के मंदिर में उनको सिंदूर लगाते हैं। सारे लोग हंस रहे हैं, भगवान नहीं हंस रहे हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं, देखो मुझे प्रसन्न करने की कितनी तीव्र इच्छा है, लोगों के हंसी मजाक का कारण बनने के बाद भी तैयार है वो, ही डजंट केयर कि लोग हंस रहे हैं मुझे देखकर, औरतें हंस रही है, आदमी हंस रहे, बच्चे हंस रहे, क्या पागल है, देखो पूरे शरीर में सिंदूर लगा के रास्ते में बैठा है। भगवान ने पूछा ऐसा क्यों किया आपने, तो बोलते हैं कि आपको कितनी खुशी होगी अगर मैं पूरा बदन को लगाऊंगा। तो भगवान ने इसको गले लगाया, मतलब ये एक लिमिट है उसका, एक परिसीमा है उसकी। तो सेवक ऐसा होना चाहिए, हम लोगों को सबको ऐसा सेवक बनना है ताकि भगवान हम पर रिझे, भगवान प्रसन्न हो जाए, भगवान के भक्त प्रसन्न हो जाए। भगवान के प्रिय लोग जब प्रसन्न हो जाते हैं तो उनकी प्रसन्नता से, क्योंकि वो भगवान को प्रिय है, उनको प्रसन्न देखते हुए भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे हमारे बच्चे हैं जो, तो आपने हमारे घर आए आप और हमारे पास कोई देखा भी नहीं, बात भी नहीं किया, कि हमारे बच्चे को गोद में लिया, प्यार किया उसको, उसको फूल दिया, उसको चॉकलेट दिया, उसको गिफ्ट दिया, वो बोला खुश हो गया बच्चा, जो उस बच्चे ने आपको चुम्मा दिया, और इतना सब करने के बाद में ऐसा आपको हाथ दिखाया आप चले गए, तो आप क्या बोलेंगे, कैसा गेस्ट है ये, मेरे घर पे आया, मेरे को बात ही नहीं किया, मेरे बच्चे के साथ बात करता रहा, ऐसा बोलेगा वो? अरे बच्चे को उसके खुश किया आपने तो वो आपके ऊपर खुश हो गया, समझा। आप उसके घर पे आए और आपका उसने बहुत तारीफ किया, आपको गिफ्ट दिया, और जाते वक्त आपके बच्चे का, बच्चे ने कुछ शरारत किया आपके साथ में, कुछ ऐसा बच्चे होते हैं ना, वो कभी कभी शरारत करते हैं, तो बच्चे का कान पकड़ के आपने ऐसा ट्विस्ट किया और आप चले गए, तो आप क्या करेंगे? अरे नहीं नहीं, मेरे को इतना तारीफ किया, मेरे को गिफ्ट दिया, मैं कैसे करूँगा। ए गिफ्ट उठा के खिड़की से बाहर फेंक देंगे आप, नहीं चाहिए इसका गिफ्ट, क्या समझता है मेरे बालक को कान पकड़ता है, आई डोंट केयर, है ना। तो प्रिय व्यक्ति होता है ना, उसके बारे में आपका ऐसा व्यवहार होता है, वो प्रिय व्यक्ति के सामने आप खुद का भी सुख नहीं चाहते हो, प्रिय व्यक्ति को खुश कर लिया वो आप खुश हो गए। वैसे हमारे भगवान हैं, उनकी प्रिय लोगों को आपने खुश कर दिया सेवा करके, भगवान खुश। इसलिए यहाँ पर ब्रजवासियों को जब आप खुश करते हो, भगवान खुश हो जाते हैं। भगवान जब खुश होते हैं, सारे बंधन आपके टूट जाते हैं, सारी अविद्या नष्ट हो जाती है, सारा अज्ञान नष्ट हो जाता है, सारा जीवन का साक्षात्कार जो है आपको प्रकट होता है आपके हृदय में, यही जीवन की प्राप्ति है। और हम लोग तो कुछ समय आते हैं, कुछ पूंजी बटोरते हैं और चले जाते हैं। सोचो उन लोगों का जो पूरा जीवन यहीं पर समर्पित है, जैसे छह गोस्वामी थे, सब छोड़ छाड़ कर आ गए इधर, बस गए इधर, प्रभु के चरणों में पड़े हुए हैं, कुछ खिलाओ तो ठीक है, नहीं खिलाओ तो देख लेंगे क्या करना है, पूरी तरह निछावर है, समर्पित है, निरपेक्ष, मोक्ष भी नहीं चाहिए। असली सेवा पादरताम पे नष्ट माम, जैसा रखना है वैसा रखो, तो देना है वो दे दो, लेकिन आपके चरणों में रखो, ये भाव लेकर हमको जाना है यहां से। हाँ अरे इतना अच्छा लगा हमको, जाने का दिल ही नहीं कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन क्या हमने वो सेवा का भाव का सार ग्रहण किया, क्या मिला क्या हमको वो, कि हमको अच्छा लगा इसलिए वापस आना है या सेवा करने के लिए आना है। कल उठ के अच्छा नहीं लगेगा तो हम बोलेंगे हम आपको उस आश्रम में रखेंगे ना, गर्म पानी है ही नहीं, तो क्या आएंगे हम लोग? हम बोलेंगे आपको 15 घंटा काम करने का, आएंगे आप लोग? केवल खिचड़ी मिलेगी रोज, सुबह शाम एक दो टाइम मिलेगा, नो चॉइस नथिंग, खिचड़ी और पापड़ खाने का है बस। बोले क्या है कैंप में मजा नहीं आ रहा है कुछ, क्या है प्रसाद में कोई दम नहीं है, कुछ वैरायटी नहीं है, स्नान करने को गर्म पानी नहीं है, क्या है कैंप ये? तब आपकी परीक्षा होगी, क्योंकि हम वो सुख दुविधा के लिए आ रहे हैं कि हमारा लक्ष्य वो सेवा करने के लिए आ रहे हैं। तो ये मैंने नहीं कह रहा हूँ कि अगले साल से हम लोग वो बटाटा वड़ा और समोसा बंद करेंगे, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं खाली बता रहा हूँ कि हम लोगों को परीक्षा अपनी खुद की करनी है कि मेरा आसक्ति किधर है, उस वैरायटी ऑफ आइटम पे है मेरी आसक्ति, या रूम की फैसिलिटी पे है, या जो सेवा मुझे मिली है वो सेवा करने में मेरी आसक्ति बनी हुई है। हम आपको ऐसा एकदम शुरुआत की कंडीशन से एकदम परम संत नहीं बनाना चाहते एक कैंप के अंदर, कि भाई ये विद्यार्थी ने आई और परम संत बन गए एकदम, ऐसा नहीं हमारा प्लान है। लेकिन कम से कम यहाँ का जो सार है वो कर्ण रूप में भी आप ग्रहण करेंगे तो भी ये कैंप सफल है आपके लिए, और आगे जाकर और बढ़िया व्यंजन मिलेंगे अगले साल भी, आपको चिंता मत करना। तब तक करुण हमारे करुणाकर शेट्टी कृष्ण शरण प्रभु है ना, तब तक ये चलता रहेगा, चिंता मत करना। अच्छे अच्छे व्यंजन मिलते रहेंगे आपको। लेकिन क्या हम ये सब सुविधा प्राप्त करने के बाद में जो एसेंस है, जो सार है, उसको ग्रहण कर रहे हैं क्या? ये अपने आप को पूछना, उसका जवाब खुद प्राप्त करना, हमको बताने की जरूरत नहीं है, आपके पास जवाब रखना, लेकिन जरूर चिंतन करके जाना है इसका, तब जाके आपका जो कैंप है वो पूरा सफल हो गया, आपका निवास सफल हो गया यहाँ का, आपको फिर राधा और कृष्ण के चरणों की आसक्ति मिलेगी, अट्रैक्शन होगा आपका हृदय का, वही जीवन की पूंजी है, सबसे बड़ा समाधान उसी में है, ना धन में है, ना ऐश्वर्य में है, ना संपत्ति में है, ना अधिकार में है, ना पोजीशन में है, ना प्रभाव में है, सब भूलभुलैया है इसमें, सब कुछ कभी ना दुख का निवारण होता है इससे किसी भी चीज से, और ना सच्चा सुख प्राप्त भी होता है उससे। देखो दुख को निवारण भी नहीं हो रहा है और सुख भी प्राप्त नहीं हो रहा है, तो ऐसी चीजें इकट्ठा करके फायदा क्या है? और समाधान तो मिलता ही नहीं जीवन में, कितना भी प्राप्त करो इन ऐसी वस्तुओं को, जितना इकट्ठा करो तो और चाहिए आपको, कोई बॉर्डर नहीं है उसका, किधर अभी हो गया हमारा, पूर्ति हो गई, ऐसा नहीं। पेट का तो पूर्ति होता है, खाएगा तो बोलेगा महापूरण, लेकिन धन की ऐसी पूर्ति होती है क्या कभी? रिटायरमेंट के बाद भी हमको चाहिए, कहीं मिलेगा तो बना लेते हैं उसको प्लान उसका। तो इस धन की आसक्ति जब होती है तो समझना कि आप सही रास्ते पर हो, जब उस धन की आसक्ति बनती है तो निश्चित गड़बड़ रास्ते में हो। तो ये बरसाना आई कैम्प जो है ना, ये एक दिव्य योजना है भगवान की हमारे सबके लिए। गुरु महाराज अभी मैं प्रवचन सुन रहा था कि हम सब लोगों को अनंत कृपा देने के लिए ये सारी राजा रानी योजना बनाती है, गुरुदेव के माध्यम से उसको प्रकट करती है, तब हम सब लोग धन्य हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर अगर हम कुछ समय के लिए आ रहे हैं, यहाँ पर परमानेंट रहने के लिए आए हैं, वो निरपेक्ष भाव सेवा का जो है ना वो हृदय में ग्रहण करना चाहिए। बाकी भगवान सबको रोटी खिलाएंगे, भगवान तनख्वाह देंगे, घर देंगे, आश्रय देंगे, कपड़े देंगे, सबको देते हैं, वो आपको भी देंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन क्या उसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, या हम लोग भगवान और भक्तों की सेवा करने के लिए, भजन करने के लिए यहाँ पर आए हैं, वो हमको देखना है। ये जब चिंतन करेंगे तो हमारा सारा मेहनत, सारा एफर्ट, सब कुछ सफल है। एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।